कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
जैसे गीता जी में कहा है कि कुपात्र को दिया दान कभी सफल नहीं होता और सुपात्र को दिया हुआ दान असंख्य गुना होकर मिलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मो, ये अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म ज्ञान है। आप यहां विचलित हो जाते हो कि एक तरफ तो द्रौपदी ने कोई गुरु नहीं बना रखा था, उसने दान भी कर दिया, और यहां गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों व्यर्थ हैं। अब देखो, ये भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल अवश्य मिलेगा। अब द्रौपदी ने दान किया, एक जरूरतमंद व्यक्ति को यानी सुपात्र को दान दिया, तो वो फल उसको मिला, लेकिन वो फल मिलकर भी निष्फल रहा, क्योंकि मोक्ष जो का तू रह गया। और यदि वो गुरु पूर्ण बना करके फिर ये ऐसे दान भी करती तो मोक्ष भी होता और ऐसी आपदा भी टलती। तो इस प्रकार द्रौपदी ने फिर कहा, अहे गुरुदेव, वो ऐसे महापुरुष थे, यदि मेरे एक लीर के कारण और ये बुढ़ गए चीरों पार और इज्जत रही वान्यारी, और जब मैं पहले जान लेती कि ऐसे महापुरुष हैं तो सर्वस देती वार, पता नहीं कितना दान कर देती, कितनी सेवा करती। तो भगवान आकर चले गए 120 वर्ष तक, जब हम इतने जानन जोगे होते तो चरणाम पड़ जाता पूरा विश्व, जिसमें परमात्मा दुल्हा रूप में यहां प्रगट थे। तो इस ज्ञान कराने के लिए ही सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि वो जौहरी बता सकता है कि ये है लाल, इसको परख कर देख रखा मैंने। तो ये दास वो सतगुरु रूपी जौहरी बना और कूड़े की टोकरी में पड़े इस लाल कबीर को परखा, और आज आपने बरज के देख लिया सौ का सौ खरा। तो कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में, जैसे मंत्र आपको दे दिया, यो तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी, खाद नहीं डाला, तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहां तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे उसको, तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाना कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो गुरु नहीं पूरा मिला, और कुत्ता बनकर वो एक सेठ के यहां होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से, वेटनरी सर्जन से, उसका ड्राइवर आदमी होता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुनकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कंबल बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला पूरा। गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोनी में मिला। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना और गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता तो मनुष्य जीवन मिलता और निकार कोठी सुविधा मिलती और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसने फिर क्या सुविधा मिलेगी। तो इसलिए बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, ये पूछो वेद पुराण। फिर ये भी सत कर दिया कि दो किया हुआ ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ और आपका यहां से पीछा नहीं छूटा तो वो दान भी व्यर्थ है। तो आज आपको वो सतगुरु और वो सत्थान मिल गया। अब कहते समझा है तो सिर दरपाओ, भौर नहीं रहे ऐसा था। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोगे इस पहरे नू। जो यहां नहीं आएगा सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार से, उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में जैसे कुत्ता वो प्राणी मनुष्य जीवन को छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर रात ने ऊपर ने मुंह कर करो आकर एक आधी बज उसका याद आया कर वो बातें, वो एक बहुत बुरी बड़ी भाई। तो उस समय कुछ नहीं बनेगा, अब समय पर संभालो। परमात्मा समझाया करते थे, काशी करवत लेत हैं ये आन कटावे सीसी, बन बन भटका खात हैं यो मिले नहीं जगदीसी। यानी जो साधनाएं आप कर रहे हो और सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान था नहीं, रोजी रोटी के लिए ये संस्कृत पढ़ा करते, अच्छा धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के लड़के, और ये पता लग जाता ये काशी विद्यापीठ से पढ़कर आ रहा है तो उस आसपास की जनता उससे के पीछे हो जाया करती थी, और उनका उद्देश्य केवल मनी मेक था। तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज्यादा कैच कराया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाओगा स्वर्ग में, और फिर एक उन्होंने बताया कि जो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास, अब उसका संत कबीर जिला संत कबीर नाम रख दिया उस क्षेत्र का, तो वो मगहर एक स्थान है आज भी है। वहां का राजा था बिजली खां पठान, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। कैसे हुआ था कि वहां अकाल गिर गया था मगर क्षेत्र में उसके राज में, और सारे जंतर मंतर करवा लिए थे, हाहाकार माच गई थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के एक महापुरुष काशी में रहते हैं, काशी का राजा वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा का शिष्य था। उस मगर के जो राजा थे बिजली खां पठान, वो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर लाए थे मगर में, तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वहां इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी पानी भर दिया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाएंगे, अब ये सिर्फ एक जो आज विशेष सत्संग का कुछ अन्य है। जिससे प्रभावित होकर के वो मगर के सभी हिंदू, और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है मगर नगर में, एक कस्बा सा है मगर, जैसे बरवाले से भी छोटा, तो उसमें और छोटा गांव सा था, तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है, सारे के सारे परमात्मा के शिष्य हो गए, क्योंकि सारे मरे थे, तड़फे थे, कति एक एक दिन गणे थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली, बिजली खा पठान ने भी मस्तक टेक दिया, और वहां कहते हैं मुसलमान एक मुसलमान था, उसके संतान नहीं थी, 60 से ऊपर उम्र होगी थी दोनों की, तब परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह भी समस्या तेरी हल हो जाएगी। दसवें महीने लड़का हो गया, उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर, उसका नाम रखा हुआ मगर में मोहल्ला कबीर कर्म। मोहल्ला कबीर कर्म यानी कर्म माने कृपा रहम, कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान हैं। हम गए थे वहां पर, हम वहां गए थे अब दो तीन बार देख कर आए, संगत को भी लेकर गए ताकि आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा, मेरे साथ गए थे भक्त, अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख कर आए थे। तो वो बिजली खां पठान उनका शेष हो गया, और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि उस मगर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो गधे की जुन्नी में जाओगा, और साथ में उस मगर के साथ से एक दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अब भी है वो दरिया, अब भी है, लेकिन वो सूखी है, थोड़ा पानी चलता उसमें, तो वह कति सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो सूखी पड़ी थी, उस मगर के नीचे का पानी खराब है, वह नहीं था उस समय, तो यह समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे कि भाई जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परमात्मा कहा करते थे कि भाई पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम में जाओगा, ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। तो वहां क्या करते थे, काशी के अंदर इस बात को सिरोधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भाई मरना तो है, वृद्ध हो गए, और क्यों ना हम काशी में चले जावा, काशी क्षेत्र में बनारस में, और वहां मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम वृद्ध हो गए, हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहां रह लें धर्मशाला वगैरह में, और कभी भी प्राण छूट जाएंगे हम स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उनको मालूम है कि इन्होंने तुम्हें कैसे पाला पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहां छोड़ दिया, धर्मशालाओं में रहने लग गए, फिर उन धर्मगुरुओं से कथाएं सुनते तो वहां रहने लगे। तो उन धर्मगुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को तुम अपने घर रख लो, इनको वहां क्या करेंगे, इनका जो वहां खर्चा होता वो खर्चा हम ले लेंगे, और ये हमारे यहां कथा भी सुनते रहेंगे, 2-4 आदमियों की रोटी बनती है, 2 ये भी खा लिया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा उन बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम इन अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्मगुरुओं के पास छोड़ दिया, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने तो खुश हो गए, भाई ठीक है, रोज कथा सुना करेंगे, गुरुजी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने उन धर्मगुरुओं ने यो सरदर्द मोल ले लिया। अब एक धर्मगुरु के उस मकान में 50-50 बुढ़े बुढ़िया बैठ गया के लालच में, अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब ये बस की बात नहीं है, उस स्थिति में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है, और उन्होंने 10-10, 20-20 इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने फिर स्कीम बढ़ाई कि यार तो बहुत बूंदी बनी भाई, ये कितना थुक्के हैं, कितना मुत्ते हैं, कितना टट्टी कर दे हैं, बता क्यों कर संगवावा इन्हें। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, मीटिंग करी गुप्त के गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया, करौत जो लकड़ी काटन का होया करे, वो आदमी काटन के लिए, और वो उनको गुप्त रख दिया ऊपर, जैसे गुफा सी बना दी और गुफा की आर्च बना दी, आर्च के अंदर से वो कुकरों तैसे आवे और उन्हें काट कर उल्टा चला जावे। ऐसा उनका कंट्रोल हैंडल थोड़ा 100-150 फुट दूरी पर रस्से बांध कर बना दिया। और फिर उनको मैं एक रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी कि भी भगवान की तरफ से क्रोत आता है और जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसकी फीस रख दी 50-100 रुपये कि जो जल्दी गड़ा कटावेगा 100 रुपये में दो, हम फिर दान पुण्य करेंगे इनके जाने के बाद और ये स्वर्ग चले जाएंगे। तो माता पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जल्दी काम बढ़े हैं 100 रुपये में। तो माँ बाप बच्चा ने सोची भाई ठीक है माता पिता की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, तो हमने वो गल कटवाना भी मंजूर कर लिया परमात्मा पाने के लिए। और वो एक कसाई आला आरा लगा दिया वहां मानस काटन का, वो भी स्वीकार कर लिया और उसकी तो घड़ी में ही मांगा दी इन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं जहां भी सुनते हैं वही लोग है, काशी में करो ताजा भगवान की तरफ से, वहां तो गला कटवा ले सीधा स्वर्ग में जाता है। परमात्मा कहा करते ये थरे गुरु धर्म गुरु क्यों ना कटवाते अपना गला, ये के करेंगे जो स्वर्ग में सीधे ये जाओ है तो ये आड़े पीछे टिंडे लेंगे स्वर्ग में सारा सुख है, ये आड़े काम का धोती तो दुनिया की। तो कहा करते ये झूठ बोले भाई सारी। फिर भी परमात्मा दूसरे तरीके से समझाते हैं, काशी क्रोत लेते हैं वहां जा कटावे शीशे और बन बन बटका खाते हैं भाई, ऐसे नहीं मिले जगदीशे। परमात्मा कहा करते ये पंडित ब्राह्मण गुरु यानी सभी ब्राह्मण नहीं जो ब्राह्मण कर्म करते हैं जो गुरु पद पर विराजमान है उनके लिए कहा करते थे कि भाई ये आपके जो मंडलेश्वर हैं गुरुजी हैं ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और भाई अगर मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा, अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन में मगर मरूंगा और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। 120 वर्ष की आयु थी परमात्मा की उस समय, 120 वर्ष। और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चलकर गए, तो कहने का भाव यह है हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगाया बिजली खां पठान को पता लगाया कि गुरुजी यहां आ रहे हैं और यहां अपना शरीर छोड़ देंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहां जा रहे हैं अपना अंतिम सफर करने के लिए इस शरीर का, यानी वहां शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने काशी के नरेश, वो हिंदू था और बिजली खां पठान जो है वो मुसलमान था, तो यहां के हिंदू जो शिष्य थे कबीर साहब के इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहां मुसलमानों का अक्षेत्र है और वो गुरुजी की बिरान माटी करेंगे, जमीन में दबेंगे और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे, ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहां लाएंगे बनारस में। यदि सीधे हाथों बिजली खां नहीं मानेगा तो युद्ध करके लाएंगे। इस उद्देश्य से सेना साथ ले ली और वो से दर्शकों की तक कण है ना कितने चाल पड़े। बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुंच गए तो बिजली खां पठान ने कहा कि भगवान यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहां कोई जल नहीं है और आदमी गणे आगे चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं, इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, बाहर से कुछ जल मंगा रखा है केवल पीने पीने की व्यवस्था हम कर पाए हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बहते जल में स्नान करूंगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। तो बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज यहां सातवा भगवान एक आमी नदी बह रही है, बहा करती थी अब सूखी पड़ी है, भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एकदम खत्म हो गया हम भी बड़े दुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूं, दिखाओ मुझे कहां है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था उससे 400-200 फुट 300-400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी। तो परमात्मा वहां चले साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहां देखकर किनारे पर खड़े हो गए। खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था और काफी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फवारा निकला और पूरी दरिया भर के और बहने लगी। ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने, वो तो बहाना था, खुड़के दुड़के जाते। तो फिर सब ने स्नान किया और नहाए धोए। परमात्मा ने कहा कि भाई बिजली खां पठान, एक चद्दर नीचे बछाओ, इस पर लेटूंगा, एक चद्दर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा के लिए एक चद्दर बछा दी, उसके ऊपर सुगंधित फूल डाल दिए एक एक इंच मोटे कि गुरुजी इस पर लेटेंगे। तब परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खां पठान, क्यों बिजली खां पठान, मुसलमान भी अपनी सेना लाकर खड़े कर रहे हो 100 फुट की दूरी पे, और बीरदेव सिंह बघेल काशी का हिंदू राजा वो भी 100 फुट दूसरी साइड में पूरी सेना की सतर्क खड़ी अपने हथियार में जकड़े हुए और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा दोनों बिजली खां पठान और बीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरुजी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नजर करके कहा कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा के नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं। तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान कहने लगे जी आपकी मृत्यु के उपरांत हम आपके सब का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे, अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ युद्ध करेंगे। हिंदू कहने लगे हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे, और ये नहीं मानेंगे तो सेना इसीलिए ला रखी है कि हम युद्ध करके जबरदस्ती ले जाएंगे। पुणात्माओं उस समय भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जनहानि होगी। अब परमात्मा ने वो कर टालना था, यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार, जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा, फिर भी सुन लो मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तुम लड़ियो ना मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हां भर रहे थे, अब ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दें गुरुजी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जाने थे इनमें केक को बदबरी पड़ी है, एक चद्दर नीचे बिछी थी, लेट गए एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर के कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ने ऊपर आकाश में जा रहे थे, शरीर जा रहे थे, वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चद्दर, हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई, गुरुजी की आवाज, ऊपर देखा सबने कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। और चद्दर उठा के देखा, जितना शरीर था उतने सुगंधित फूल बन गए उस मालिक के पूरी, वो तो मालिक लीला थी, सह शरीर चले गए। अपने आत्माओं कहा तो वह कतलेआम होना था, और कहा वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नो लिपट कर रो रहे हैं जैसे किसी की मां मर जा और पिता मर जा कट्ठे, दोनों ऐसे रो रहे थे बिलख बिलख के और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को, रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके तो खुद अल्लाह आए थे। रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख अंतिम समय में भी सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में भी उनको इतना तंग कर दिया। तो उन्होंने बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चद्र आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे फूल आप ले लो आधे हम ले लेते हैं। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ ही नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते हैं, तो आधे आधे बांट के वहीं पर 100 फुट का फैसला है। इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार। इसमें थोड़ा सा क्षेत्रमंद इसके अंदर भी जाकर आए थे, और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में इस साइड में एक और गेट है, वो हिंदुओं के लिए है। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है, और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में, ये रहा। वहां कोई भेदभाव नहीं है हिंदू और मुसलमानों का आपस में, आज तक वहां का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये यादगार आज भी विद्यमान है, उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनात्मा बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को, जहां पर कबीर पंथ का एक वहां आचार्य महंत रहता है, दास वहां देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। गरीब दास जी महाराज ने परमात्मा की महिमा को कलम तोड़ बताया लिखा है, अपने आत्माओं जैसे यहां काल ने कितना भयंकर जाल बना रखा है, आप जब यहां से चलते हो उसके बाद काल के एक जबरदस्त जाल ऊपर है। परमात्मा जब यहां से चले सहशरीर जा रहे थे तो रास्ते के अंदर ये दुर्गा ये माया एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर और सामने खड़ी होगी, और परमात्मा से कहने लगी कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे देव हैं, और मेरा यहां बहुत अच्छा सुंदर महल है, मेरा बहुत अच्छा मकान है, और देख मैं कितनी सुंदर हूं, और आप मेरे साथ यहां रहो, और मेरे को जो है यहां के सब देवता मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको चाहती हूं। परमात्मा बोले ठगनी तू चली जाए यहां से, मैं तेरे को जानता हूं। अब जब वहां से परमात्मा काशी से चले मघर के लिए, उस समय की वाणी है, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। पयाना माने प्रस्थान, काशी से मगर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रहे हैं। कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना हो, दोनों दीन दोनों धर्म हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान ना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा, परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारे इस मुक्ति अक्षेत्र ने छोड़कर वहां मरूंगा जहां तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहां जाऊंगा, देख लेना क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्था न हो। सहा सिकंदर कदम लेत है, सहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संघ है, वो ब्राह्मण है, चारों वेदों के वक्ता। भाई चार वेद के वक्ता संघ है, वो खोजी बड़े बियाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी नाना हो। सट दर्शन जाके संग चले हैं, ये छह भेख गिरी पूरी कहते सारे चले, देखांगे कैसे मरेगा और कैसे गदा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट मनावे, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बच्चे पोथी बाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगन पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। सहा सिकंदर कदम लेत है, सहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, ज्ञान समुंदर दाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई सठ दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट मनावे, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहत जुलाहा, अवगत अलक अमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेल ला करे बेनती, वीर सिंह बघेल ला करे बेनती, वो बिजली खान पठाना वो। दो चादर बख्शीस करी है, दो चादर बख्शीस करी है, दीना ये परवाना वो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, वहां देख बहे हैराना हो। पदलोलीन बहे अविनाशी, पदलोलीन बहे अविनाशी, वहां पाया पिंडन पराना वो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, वो शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, उसके फर्क दजा निशाना वो। दोनों दिन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे तो दुर्गा एक सुंदर युवा औरत का रूप बना के और वहां खड़ी होगी सामने जाके। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो भाई काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले झलमल देही नूरा हो। माया आद अर्श से उतरी, अर्श माने आसमान से, आदि माया ये दुर्गा। माया आद अर्श से उतरी वो बनी अप्सरा हूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, मंदिर माने महल, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर ये भोग हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, कहे कबीर सुनोरी माया, तुम कुटल नजर क्यों घूरा हो, जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी वो होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो, कि मैं ऐसे स्थान पर रहती हूं मुझे कोई नहीं देख सकता वहां पर। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले वो झलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो, कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो मर जावे, जो तुझे खावे वो बह जावे, तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहां सफेद छत्र है, परमात्मा कहते हैं कि माया तो बूर का लड्डू है, बूर का, लकड़ी के बूर से बनाया हुआ लड्डू, शीशे के बर्तन में रख दे इतना बढ़िया दिखर, खाओ जो पता चल रहा है कितना का आनंद था। कहते तो उस बूर का लड्डू है और मूर्ख खावत ने तेरे को मूर्ख टच करेगा। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले वो जलमल देही नूरा हो। परमात्मा क्या बताते हैं, मेरा श्वेत मुकुट और श्वेत छत्र है जा बाजे अनद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया हमसे रहिए दूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले वो जलमल देही नूरा हो। अब परमात्मा उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि तू कितनी नालायक है। अब यहां हर पहलू पर ज्ञान दिया गया है। यहां पर कबीर साहब क्या बताते हैं, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताया है कि बदनारी लंगर कामनी ये बोले मधुरे हेत, फेंट पड़े छोड़े नहीं क्या मगहर कुरुक्षेत। बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं या काटे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बोले, कोई साधु ऊबरे ये मुनिजन पिए गोले। बदनारी लंगर कामनी जामे अनगण खोटे, फांसी डारे बाहा कर ये करे लाख में चोटे। बदनारी लंगर का मैनी या बोले मुद्रे बैने, जाको नहीं पतीजी ये है घूंघट घट में सैने बदनारी लंगर कामनी या बोले मुद्रे बैने जाके पास न बैठियो जाका कैसा देने सतगुर हेला देते हैं सुनियो संत सुजाने बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खाने नैनो का जरबाहा करिए खाए लिए हंसे हाथों में दिला कह ये डोब दिए कुलबन से उल्टी मांग भराए कर ये मंजन कर हैं गाते मीठी बोले मगन होए ये लावे बहुविध गाते माया काली नागनी ये अपने जाए खाते कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात है। अब बदनारी काली नागनी ये देखत ही डस खाए बोले से तब खंड हुए पर से सर्वस जाए अपना आत्माओं बदनारी काली नागनी ये मारत है भरडंग के सुर नर मुरिजन डस लिए खाए राव और रंग के बदनारी काली नागनी ये मारत है भरडंग के शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संके। अब क्या बताया है कि निकम्मी औरतों को परमात्मा ने कैसे बिसराया है उसके दोष बताए हैं। इसके साथ साथ अच्छी बहन बेटियां हैं उनकी कितनी कलम तोड़ महिमा गाई है। कहते नारी नारी क्या करे एक मैली एक पाक पाक माने पवित्र एक मैली मैली जो करेक्टरलेस और पाक जो है अपनी नेक नीति से चलने वाली। नारी नारी भेद है एक मैली एक पाक जा उदर दुर उपजे जाकी भरिए साखे कि वह भी माँ थी वह भी नारी थी जिसके पेट से धरु जैसे महापुरुष का जन्म हुआ तो ऐसी माई को कहते हैं उसकी साख भरिए कि ऐसी माँ होनी चाहिए ऐसी नारी होनी चाहिए। कामनी कामनी भेद है एक मैली एक पाक है जा उदर पर लादे थे जाकू जोड़ू हाथ है कि वह भी नारी थी जिसके उदर से प्रहलाद जैसे भक्त हुए। कामनी कामनी भेद है एक उज्जवल एक गंदे जा माता प्रणाम है जा उपजे भरतरी गोपी चंदे कामनी कामनी भेद है एक हीरा एक लाले दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाले कि वो भी नारी थी अनसुईया जैसी महानात्मा और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ वो नेक नारी थी। कामनी कामनी भेद है एक हीरा एक लाल दत्त गुसाई अवतरे अनसुईया के नाले कामनी कामनी भेद है एक रोजम एक हंस जनक विधेयी अवतरे धन माता कुल वंशे कि ऐसी माता धन है जिसे राजा जनक जैसे धार्मिक व्यक्ति का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे नारी कंचन कूपे नारी सेती उपजे नामदेव से भूपे नामदेव जैसे महापुरुष जिस मां से जन्म हुआ तो उस नारी में और निकम्मी नारी में कितना अंतर है। नारी नारी क्या करे नारी बहुगुण भेवे जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव नारी नारी क्या करे नारी कंचन कूपे नारी सेती उपजे ये नामदेव से भूपे नारी नारी क्या करे नारी भक्त विलास नारी सेती उपजे धना भगत रविदास के जिन वो भी नारी थी वो भी माताएं थी बहनें थी जिनसे धन्ना भगत जैसे और रविदास जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे नारी कुनिरताए नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए नारी नारी क्या करे नारी नर की खाने नारी सेती उपजे हे नानक पद निर्वाण। के नानक जी जैसे महापुरुष भी नारी से ही जन्म हुआ है, यानी उसमें भेद बता रहे हैं अच्छी और बुरी में। नारी नारी क्या करे ये नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे दादू भगत हमेल। नारी नारी क्या करे नारी का प्रकाश, नारी सेती उपजे ये नारद मुनि से दास। गरीब नारी नारी क्या करे नारी निर्गुण नेश, नारी सेती उपजे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। गरीब नारी नारी क्या करे ये नारी मूला माए, ब्रह्म जोगनी आद है चरण कमल लोलाए। अब यहाँ ये बता रहा है कि जो अच्छी हैं उनकी आदर करने के लिए कहा है, वो आदरणीय है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े थे, किन भगवाना के गुण गाया करते थे हम। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की महिमा को समझना है। पुण्यात्माओं, जब तक हम भगवान को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो अभी तक हम अपना जीवन नाश कर ही रहे थे, और कोई भी आकर हमें डगमग कर देगा। इसलिए हर पहलू पर प्रत्येक सत्संग में कोई न कोई आपको कथा सुनाई जाती है, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये धारणाएं गलत थी हमारी भगवान के विषय में, अब इन सत्संगों से आपकी क्लियर हो जाएगी। ये यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि अभी तक हम लोक वेद सुना करते थे कि कबीर साहब एक दुल्हा थे, दानक थे, कहीं पढ़े मिले थे, विधवा ब्राह्मणी का हुए थे। हमने कुछ भी सिर पैर परमात्मा का नहीं पता था। तो आंखों देखा उन संतों ने बताया है, और साथ में हमारे सदग्रंथों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ। तो धन भाग आपके पुण्यात्माओं, आपको यह अमर कथा अमर पुरुष की सत्यनारायण की कथा सुनने को मिली। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ।